मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 16 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की कुछ ही दिनों बाद होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इन मित्रों के नाम हैं प्रियंक जैन, आप चिरूर मैनपुरी मध्य प्रदेश से हैं। पुरुषोत्तम, आप बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। विकास चौरसिया, आप खलीलपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और ममता गौर भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो प्रियंक, पुरुषोत्तम, विकास और ममता, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी स्वागत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, और वह यह कि इस बैच के लिए जो मैं अब तक स्वागत करता रहा हूं, आज का यह दिन स्वागत का अंतिम दिन है। यानी कि अब इस बैच के लिए एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और नेक्स्ट बैच की डेट घोषित हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट बैच है फ्रेंड्स, वो 11 मार्च से 25 मार्च 2018 ठीक इसी पैटर्न पर 15 दिन का यह बैच होगा। और एक इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और एक इसी के साथ ही जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उन्हें टोटल फीस में 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों, नेक्स्ट बैच की जो डेट है वो है 11 मार्च से 25 मार्च 2018 रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन इज ओपन और जो अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं हमारे जो अभी जो बैच हमारा जो कम हुआ है, तैयार हुआ है, सभी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और स्पेशली उनके पेरेंट्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके पेरेंट्स ने एकेडमी पर विश्वास किया है और वो विश्वास करके अपने बच्चों को 15 दिन के लिए यहां भेज रहे हैं ताकि वो कुछ लर्न कर सकें, अपने आप को सिविल सर्विस के लायक बना सकें। तो उनके इस विश्वास के लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब हम आते हैं अपने उस थोड़े से विषय पर जो खासकर मैं अभी अपने आने वाले स्टूडेंट्स से कर रहा। दोस्तों, मैंने कुछ बातें आप लोगों से शेयर की है और देखिए, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मैं भले ही ये बातें स्पेशली उनको टारगेट करके कह रहा हूं जो स्टूडेंट अब कुछ दिनों के बाद ही भोपाल में आमने सामने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका संबंध केवल उन्हीं से ही है, नॉट एट ऑल। ये अवसर जरूर ऐसा है कि मैं उनको ही संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि उनको संबोधित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग या कह लीजिए या प्रशिक्षण कह लीजिए या लर्निंग कह लीजिए शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के काम की है, हर एक उस स्टूडेंट के काम की है जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और यूं कह लीजिए कि जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहना चाहते हैं, और हम सबको जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहना ही चाहिए। मित्रों, मैंने मानसिक तैयारी की बात कही, फिर आपको फिजिकल तैयारी की बात भी आप लोगों से की है और आज मैं आपसे स्वावलंबन की बात करने जा रहा हूं। मित्रों, ये जो स्वावलंबन की मैं बात कर रहा हूं, इसका संबंध आप मत समझिए कि किसी उपदेश से है, नॉट एट ऑल। मेरे जो स्वावलंबन का संबंध है वो आपके व्यक्तित्व के विकास से है और जीवन के व्यवहारिक पक्ष से है, उपदेशात्मक पक्ष से नहीं, नैतिक पक्ष से नहीं, धार्मिक पक्ष से नहीं। मित्रों, अब आप सब अपने अपने आने की तैयारियां करेंगे, राइट? मुझे मालूम है कि खासकर जो यंग स्टूडेंट होते हैं, सभी की बात मैं नहीं कहता, लेकिन काफी कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी करने की जिम्मेदारी अपने घर के किसी मेंबर्स पर डाल देते हैं। या तो माँ तैयारी करती हैं या बहन तैयारी करती हैं या और दूसरे मेंबर्स तैयारी करते हैं, मतलब अब वो जो भी सुविधाजनक स्थिति होती है उसको ये सौंप देते हैं। मेरा ये कहना है मित्रों कि नहीं, आप यह काम किसी दूसरे को मत सौंपिए, स्वावलंबी बनिए, अपनी तैयारी खुद कीजिए। आप देखिए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, आप बकायदे उसकी लिस्ट बना लीजिए और अभी से ही आपको चाहिए कि आप जो भी अटैची लेके आने वाले आना चाह रहे हैं, जो बैग लेकर के आना चाह रहे हैं, या अपना एक स्थान बना लें और स्थान बनाने के बाद जो जो चीजें आपको लानी है वो वहां रखते जाएं। ऐसा मत सोचे कि अरे उस समय सब याद आ जाएगा। वर्किंग पैटर्न को थोड़ा सा बदलें, क्या फर्क पड़ता है, आप एक जगह बना लीजिए और वहां वो चीजें रखते जाइए। अगर जगह नहीं है तो बैग रखने के लिए जगह तो सब जगह होती ही है, आप उस बैग में वो सारी चीजें डालते चले जाइए। और दूसरे किसी से मत कहिए, हाँ कोई मदद लेनी हो तो आप ले लीजिए, आप खुद अपनी एक एक सामग्री जुटाइए, एक स्थान पर रखते जाइए और खुद उसे पैक कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा, आप देखेंगे, अब इसका मैं मनोविज्ञान बता रहा हूं, कि आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में आपको याद आ गया सफर करते समय कि यार ये चीज रखी कि नहीं रखी, अब आपको चिंता नहीं होगी कि चलो मैं मम्मी से पूछूंगा या दीदी से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, नॉट एट ऑल। आपको मालूम है कि आपने रखा है या नहीं रखा है और ना आपको अपने बैग को टटोल करके पता लगाना पड़ेगा कि रखा है कि नहीं रखा है। ये तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से सफर करेंगे, आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा। जब हम किसी भी काम को खुद करते हैं मित्रों, तो एक तो पहली बात यह है कि हम जानते हैं कि मुझे इस काम को कैसे करना है, हम ये भी जानते हैं कि मुझे इस काम को किस रूप में करना है, किस लिए करना है, तो मैं उसको अपने उस हिसाब से कर लूंगा। दूसरा तो नहीं जानता है ना, दूसरे के लिए तो वो चीज चीज है लेकिन आपके लिए वो चीज चीज नहीं है। आपके लिए तो उसके साथ 15 दिन जीना है, तो आपकी वो जिंदगी का एक हिस्सा है। और जैसे ही आप अपने लाने वाली चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेंगे, मान करके चलिए कि चीजें बदल जाएंगी। तो मित्रों आप यह सब करें और मैं एक अपील करूंगा खासकर उन स्टूडेंट्स से जो अभी क्लासेस में आने वाले हैं कि प्लीज आप अब डेली ऑडियो लेक्चर सुनना बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि मैं आपको लगातार रोजाना कुछ न कुछ इस तरह के संबोधन देता रहूंगा। और आप मान करके चलिए कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अप्रत्यक्ष क्लासेस ही सही लेकिन हो चुकी हैं। तो मित्रों अब इस संबोधन के बाद अब हम मुख्य विषय के रूप में मैं आपको बता दूं कि हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि अमीरों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने कुछ इस तरह की बातें कही हैं, तो उसी को आधार बना करके आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। थोड़ी सी दूसरी न्यूज को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक आपने न्यूज सुनी होगी कि कल के रेडियो न्यूज में है कि अब ये कहा जा रहा है कि भारत में जो आर्थिक मंदी का दौर है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी ये बात कह रही है, नीति आयोग भी यह बात कह रहा है, हमारे वित्त मंत्री जी भी यह बात कह रहे हैं और कुछ अखबार भी यह बात कह रहे हैं, कुछ अर्थशास्त्री भी यह बात कह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या स्थितियां होती हैं, आंकड़े बोलेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी शुरू में कह रहे थे और हमारे नीति आयोग भी इस बात को कह रहा था कि चूंकि अभी एक शिफ्टिंग पीरियड है, हम एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो यह संक्रमण काल इस तरह का होता ही होता है। तो अभी जो हम आर्थिक मंदी की बात सुन रहे थे, देख रहे थे कि राजस्व घाटे में वृद्धि होने की संभावना है, जीडीपी गिर गया है, निर्यात घट गया है, ये सारी चीजें जो आंकड़े जो इंडेक्स होते हैं खासकर आर्थिक वृद्धि दर के, वो बड़े कमजोर दिखाई दे रहे थे, तुलनात्मक रूप से कमजोर दिखाई दे रहे थे। तो अब ये माना जा रहा है कि वो संभलने शुरू हो गए हैं और बीच में एक दो आंकड़े ऐसे आए भी हैं। तो ये एक केवल एक परिवर्तन है अर्थव्यवस्था के स्वरूप में, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मित्र। इसके बाद वित्त मंत्री का एक हमारे एक स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि जो विश्व मुद्रा कोष है, इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम कहते हैं, कि उसकी जो कोटा प्रणाली है उसमें परिवर्तन किए जाना की जरूरत है, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं अभी आपको संक्षिप्त में केवल इतना ही बता दूं कि खासकर जो दो बहुत ही जबरदस्त किस्म के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिए कि जो फेडरल बैंक है वो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे यहां का रिजर्व बैंक है तो मतलब वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है कहना चाहिए, तो वो फेडरल बैंक इंटरनेशनल बैंक नहीं है, लेकिन जो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है ये विश्व स्तर के बैंक है, ये सभी के लिए काम करते हैं। तो ज्यादातर अब ये आलोचना होने लगी, जैसे कुछ दिनों पहले हमने एक बात की थी कि UNO में सुधार की बात कही जा रही है, इसी तरह से अब IMF में भी सुधार की बात कही जा रही है, और ये आरोप लगाया जाने लगा है कि ये जितने भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो पावरफुल हैं वो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनके फेवर में बात करते हैं, उनके फेवर में काम करते हैं, और जो विकसित देश जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं उनके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है। और जब तक पूरी दुनिया का विकास नहीं होगा तो मान करके चले कि ये विकसित देशों का भी अब आगे विकास नहीं होना है, तो जो कोटा प्रणाली है किसको कितना फंड दिया जाना चाहिए, किस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी एक सिस्टम है उसके जो भी तकनीक नियम कानून होंगे उनमें परिवर्तन किए जाने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, ये हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है। मुझे लगता है कि अब इसको लेकर के हो सकता है कि कुछ एडिटोरियल कमेंट आए, एडिटोरियल आर्टिकल्स आए, जब ऐसा होगा तो फिर हम लोग उस पर बातें करेंगे। सतर्कता के तौर पर बस मैं ये बता रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण बात हमारे वित्त मंत्री जी ने कही है। फ्रेंड्स अब आइए मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और इस जो मुख्य विषय का भी मैंने चुनाव किया है वह खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक तरह से जो वार्निंग दी है, वार्निंग जारी की है विकसित देशों को, उसी से मैंने ये विषय उठाया है, और इसके माध्यम से आप थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और खासकर भारतीय संदर्भ में, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये अच्छा टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स कि जो टैक्स का जो सिस्टम होता है बेसिकली वो ये है कि अमीर जो धनी व्यक्ति है क्योंकि वो ज्यादा कमा रहा है राइट, तो उससे ज्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए, ये सामान्य सिद्धांत है और ये अभी की बात नहीं है, ये शुरू की बात है। वैसे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई जो अमीर आदमी है वो जो कमा रहा है तो अपने लिए कमा रहा है तो क्या कमाई की सजा के बतौर वो अधिक टैक्स दे, ये सामान्यतया ये बात उठती है कॉमन सेंस के तहत। लेकिन यहां जो एक बहुत प्रबल तर्क है मित्रों वो ये है कि जो व्यक्ति कमा रहा है जो धनी व्यक्ति है वो बेसिकली ये मानकर हमें चलना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो सोशल रिसोर्सेज हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हो, जो भी रिसोर्सेज हो उन रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग कर रहा है, दूसरों की तुलना में अधिकतम अधिक उपयोग कर रहा है, अदरवाइज वो कमा नहीं सकता है। तो चूंकि वो अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसीलिए यह दायित्व तो बनता है, ये मतलब मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि वो उनकी कीमत चुकाए। तो उनकी कीमत कैसे चुकाता है, वो टैक्स के रूप में चुकाता है राइट। दूसरी बात जो है फ्रेंड्स की पूरी दुनिया में देखिए, अब चाहे वो पूंजीवादी देश ही क्यों ना हो, अमेरिका पूंजीवादी देश है, यूरोप के ज्यादातर राष्ट्र पूंजीवादी देश है राइट, भारत अभी अपने को पूंजीवादी देश सीधे सीधे नहीं मानता है ना, अपने को अभी वो समाजवादी ही कहता है, यहां तक कि पूंजीवादी देश भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं और इस तरीके से चीजों को शेप भी देने लगे हैं कि जो गरीब वर्ग है जब तक हम इस गरीब वर्ग को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक समाज न तो आर्थिक विकास हो सकेगा, आर्थिक विकास से भी उसका संबंध है सही मायने में, न तो आर्थिक विकास हो सकेगा और उससे भी बड़ी बात है कि सामाजिक शांति नहीं बनी रहेगी, जिसको कह लीजिए सामाजिक व्यवस्था पर भी लगातार आघात होता रहेगा। देखिए अगर एक तबका गरीब है तो देखिए गरीब लोगों की जो जीवन प्रणाली होगी वो डिफरेंट किस्म की होगी, समाज में अगर बहुत ज्यादा भेद है, वर्ग भेद है, धन भेद है, कह लीजिए असमानता है, तो वो असंतोष को जन्म देगा, एक सामाजिक असंतोष पैदा होगा। जब सामाजिक असंतोष पैदा होगा तो उसकी अभिव्यक्ति पता नहीं किस रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, तोड़फोड़ के रूप में हो, अपराधों के रूप में हो, पता नहीं किस रूप में हो, मनोवैज्ञानिक स्तर की बीमारियों और परेशानियों के रूप में हो, और वैसे भी जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है चाहे वो पूंजीवादी राष्ट्र ही क्यों ना हो, जैसे हम अमेरिका वगैरह को पूंजीवादी राष्ट्र मानते हैं, तो वहां जाकर के कल्याणकारी योजनाओं को देखिए आप, किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, हम लोगों का तो प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, अनुभव मतलब दूसरों के संदर्भ में, कि वो अपने जो गरीब व्यक्ति लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए कितनी योजनाएं चलाते हैं। वृद्धों की तो इतनी जबरदस्त योजनाएं हैं कि उनका सारा खर्च सरकार उठाती है। सोचिए, जो गरीब लोग हैं उनको मकान उपलब्ध कराना, उनको भोजन उपलब्ध कराना, उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, उनको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब राज्यों के काम है। ये बात अलग है कि जब से वैश्वीकरण का दौर चला है तो इन सब में सभी देश अब कुछ कुछ कटौती करने लगे हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी हो गई है। लेकिन आज का जो स्टेट है, मतलब मॉडर्न जो देश है, वो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से अपने को पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। एक ऐसे समय में सोच कर देखिए कि जब शरणार्थियों की बात आती है, अब वो तो दूसरे देश के नागरिक हैं, मान लीजिए किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, वो शरणार्थी बन के जा रहे हैं, तो वहां भी मानवता की बात होने लगी है कि नहीं, आपको इन्हें शरण देनी है। तो अब सवाल यह है कि जो ये अब दो वर्ग हो गए सीधे, देखिए धनी वर्ग और गरीब वर्ग, तो अब ये जो गरीब वर्ग पर जो खर्च होगा, क्योंकि ये तो टैक्स देने की स्थिति में है नहीं, तो इसके लिए धन आएगा कहां से? तो वो धन जो है धनी लोगों से दे करके उनको दिया जाएगा। खासकर अमेरिका, जब ट्रंप जी जब इलेक्शन में लड़ रहे थे तब भी वो ये बात कहते थे कि मैं धनी वर्गों पर टैक्स का बोझ कम करूंगा, ये बात वो कहते थे, और अब उस पर वो काम भी होने लगा है। अमेरिका इस बारे में सोच रहा है, और खासकर IMF की चिंता इस बात की है कि कहीं अमेरिका ने शुरू कर दी है, माली शुरुआत कर दी इसकी, तो दूसरे देश भी ऐसा न करने लगे, और यदि दूसरे देश भी ऐसा करने लगेंगे तो फिर जो गरीब लोग हैं, या यूं कह लीजिए कि फिर देशों में जो असमानता है, आर्थिक असमानता, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे भारत का ही देख लीजिए, भारत में पिछले 25 साल हो गए, मतलब लगभग 30 साल होने जा रहे हैं आर्थिक उदारीकरण के, तो हमारी GDP ग्रोथ तो बहुत हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि आर्थिक असमानता भी बहुत बढ़ रही है। आपको बीच बीच में अखबारों में काफी कुछ पढ़ने को मिलता होगा। तो जब आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो आर्थिक असमानता से संबंधित फिर जो दूसरी बुराइयां हैं वो भी समाज में सामने आएंगी। तो मित्रों, मुझे लगा कि इसके बहाने कुछ इस तरह की बातें की जानी चाहिए जो मैंने आपसे की हैं, और इससे संबंधित जो एक क्लिपिंग्स है दैनिक भास्कर की, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और दूसरी भी काफी क्लिपिंग्स मैं आपको दे रहा हूं। मित्रों, आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें देख लेंगे। तो अब मैं आता हूं ईमेल पर। फ्रेंड्स, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मित्र, उन्हीं में से कुछ दोस्त नौजवान साथियों के नाम हैं। विवेक कुमार धवन न्यू दिल्ली से, सुमन कुमार मंडल कासगंज बिहार से, मोइन काबरा बुलढाणा महाराष्ट्र से, प्रशांत सिंह औरैया उत्तर प्रदेश से, सूर्य प्रताप सिंह रायबरेली उत्तर प्रदेश से, श्वेता राज, दिव्येश प्रताप सतना मध्य प्रदेश से, विश्वनाथ प्रताप सिंह आगरा उत्तर प्रदेश से, ज्ञानेन्द्र सिंह न्यू दिल्ली से, दिनेश कुमार यादव, विनय कुमार मीना, भवानी सिंह, पुष्पेंद्र कुमार गोविंद खेड़ा उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण कुमार जालौर राजस्थान से, युवराज सिंह चुरू राजस्थान से, और पीयूष कुमार सिंह छपरा बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।